इसके बाद अब अगली आयत बहुत अहम है, आयत नंबर 81 से 82। आप देखेंगे कि इन दो आयतों के अंदर नबुवत की बात है, अहम बात है। आइए देखते हैं। वइस अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबीयीन, और ए रसूल वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम नबियों से पुख्ता अहद लिया। ठीक, मीसाक, वसका, वसूक, कल अब उर्दू में हम पढ़ते हैं। नबीयीन, नबी की जमा है, नबियों से प्रॉफिट्स। क्या कहा, यहां से आप ब्रैकेट लगा ले, बेशक ये वो वादा, लमा आतैतुकुम मिन किताब, जबकि मैं दे दूं तुमको किताब, व हिक्मा, और हिकमत। नबियों से ये वादा लिया कि जब मैं तुमको किताब दे दूं और साथ ही साथ क्या दे दूं, व हिकमत, और हिकमत दे दूं, यानी तुम नबूवत के मनसब पे फाइज थे और अपनी हिकमत के मोती फैला रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, फिर क्या हुआ, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, फिर आ जाए तुम्हारे पास वो रसूल, कौन सा, उस चीज की जो तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है। यहां लिख लीजिए रसूल, उनसे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तफसीर बाकी तुम करेंगे बाद में, सिर्फ तर्जमा ले ले कि जब आ जाए तुम्हारे पास वो रसूल जो उस चीज की तस्दीक करता है, वेरीफाई करता है जो तुम्हारे पास है। माकुम से क्या मुराद थी, उस दौर के नबी के सहीफे या किताब, यानी जो भी उनके पास थी। क्या करना है तुमने आने वाले रसूल के साथ, लतुमिनुन्न बिही, अलबत्ता तुम ईमान लाओगे उस पर। पहली शर्त, मूसा, ईसा, इब्राहिम, इसहाक, हर नबी, 25 नबियों के नाम कुरान पाक में आते हैं, और तस्करा रिवायात से जो मिलता है 300 से ऊपर नबी और लाखों की तादाद तक भी बात जाती है। आपने बहुत मारूफ रिवायत सुनी होगी 1,24,000 पैगम्बरों की, रिवायत स्ट्रांग नहीं है लेकिन मौजूद है। तो इतने नबियों को ये कहा गया कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, रसूल उनकी पहली तफसीर, दूसरी तफसीर भी आती है साथ ही रसूल उनकी, अगला नबी आ जाए, ठीक है, और जब अगले को बीच में लाएंगे तो जब भी कोई नबी उसके बाद अगला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आएंगे ना। यानी इस आयत से क्या पता चलता है कि अल्लाह ने अंबिया कराम से ये प्रॉमिस लिया था कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो तुम उन पर ईमान लाओगे, पहली बात, और वलतन सुरुन न हो, और अलबत्ता जरूर तुम उसकी मदद करोगे। ये जो मैंने जरूर लंबा खींचा ना, ये नून की शर्त है, जरूर बिल जरूर उसकी मदद करोगे। अब ये बात करने के बाद अल्लाह ने पूछा, काला पूछा, अकरर तुम, क्या तुम इसका इकरार करते हो, बोलो, मुंह से बोलते हो, व अखस तुम अला जालिकु मिस्री, और क्या इस पर भारी अहद लेते हो। बात वाज है ना, ऐसे लग रहा है ना कि नबी खड़े हैं और अल्लाह ताला उनसे ये अहद ले रहा है और पूछ रहे, बताओ क्या तुम इस बात को मानते हो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अगला नबी आ जाए तो तुम उस पर ईमान भी लाओगे और मदद भी करोगे। आप यहां से आगे सुनिए नबियों ने क्या कहा, कालू, उन्होंने कहा, किसने कहा, नीचे लिख लीजिए, तमाम रसूलों ने कहा या नबियों ने कहा, अकररना, हाँ हम इसका इकरार करते हैं, यस वी कन्फेस, इकरार करते हैं, हम इसको जुबान से बोल के क्या कहते हैं। अच्छा, काला फरमाया, अब ये अगला काला इसके नीचे लिखिए, किसने कहा, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा, फशहदू, बस गवाह रहो, व अना माकुम मिनश्शाहिदीन, बेशक मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, यानी तुम भी गवाह रहो मैं भी गवाह हूँ। हाँ, आयत 82, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, फिर जो इस अहद से फिर गया इसके बाद, फौलाइका हुमुल फासिकून, तो यही लोग नाफरमान हैं। ऐसे लोगों को फिक्र करनी चाहिए कि इनके साथ कल क्या होने वाला है। ये है वो अहद जो अंबिया किराम से लिया। कुरान पाक में तीन अहदों का तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा, तीन किस्म के अहद हैं। एक अहद जो पूरी इंसानियत से लिया गया, हमारी रूहों से, और वो क्या है, अलस्तु बिरब्बिकुम, पीछे कई दफा इसका तस्करा हुआ ना, हम सब की सोल से अल्लाह ताला ने यह अहद ले लिया था कि दुनिया में जाने के बाद अल्लाह को रब मानोगे, ठीक है, इसको कहते हैं अहद अलस्त, एम आई नॉट, इंग्लिश में आप लिखेंगे ना, एम आई नॉट, मुराद क्या है, योर गॉड, योर लॉर्ड, योर मालिक, योर राजिक। ये तो पहला अहद इस सबसे लिया। ये कहाँ हुआ था? रूहों से हुआ था। पीछे बात हुई कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पे अल्लाह सुभान व तआला ने हाथ फेरा था और उस वक्त ये अहद उनसे ले लिया था। मैंने भी दिया हुआ ये अहद, आपने भी दिया हुआ। और बच्चे को यह अहद याद होता है, इसीलिए वो सच बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अहद अल्लाह ताला ने उलमाए यहूद से लिया था, अहले किताब के उलमा से। और वो क्या कि तौरात के अहकामात को छुपाएंगे नहीं। इसका तस्करा हम पीछे सूरत बकरा में पढ़ चुके। मीसाक का लफ्ज पीछे आया कि जब हमने तुमसे पुख्ता अहद ले लिया, मीसाक ले लिया। तीसरा अहद अल्लाह ताला ने सिर्फ नबियों से लिया था, और ये वो अहद है जिसका तस्करा इस आयत में है। और उनसे ये कहा था कि तुम इस दुनिया में रहते हुए इस दीन की बात करते हो, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो फिर तुम उनको मानोगे और अपनी बात को छोड़ दोगे। तो ये अहद था जिसकी बुनियाद पे, अब गौर से सुनिएगा एक जुमला, किसी नबी ने यह तोड़ा नहीं, पहली बात है, ठीक है। लेकिन इस अहद, बास लोग कहते हैं कि यह अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए था, तो फिर तो आप समझिए कि किसी नबी की अपनी जिंदगी में इस अहद को निभाने का मौका नहीं आया। क्यों? सबसे आखिरी नबी कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है? ईसा अलैहिस्सलाम। जिंदा तो हैं आज भी, हमारा ईमान है, लेकिन दुनिया में नहीं है। वो पूरा करेंगे इस अहद को कब? याद कीजिए पिछला सबक कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो क्या बनेंगे? उम्मते मोहम्मदिया का एक आम फर्द बनेंगे। जब वो आएंगे तो इमामत का मुसल्ला तैयार होगा, बैतुल मकदस के पास उतरेंगे और जमात का वक्त होगा, और इनको देखकर जो इमाम होगा वो पीछे होने चाहेगा कि आप आइए और आप नमाज पढ़ाएं, तो कहेंगे नहीं, ये उम्मत एक दूसरे की खुद इमाम है, यानी ये एक दूसरे की इमामत करते हैं और वो एक नबी के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इनसे ये अहद पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, किसी नबी की जिंदगी में ये नहीं हुआ, लेकिन नबियों ने क्या किया? अपने उम्मतियों को कहा, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है ना कि यह अहद कहाँ लिया गया, किस तरह लिया गया। तो इसमें दो तीन राय है। नंबर एक, नबियों की रूहों से ले लिया गया, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं कि नहीं, हर नबी की जिंदगी में वही के जरिए उनसे लिया गया, ठीक है। और तीसरी राय भी नोट कर लीजिए कि किताबों के जरिए लिया गया। तौरात में कह दिया गया कि जब नबी आएंगे तो तुम मानोगे, पीछे आपको रेफरेंसेस लिखा दिए, ठीक है। तो कैसे भी लिया, नबी ने इस अहद पे अमल कैसे किया कि अपने दौर के लोगों को ये बात कह के गए कि देखो, मेरी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो मैं उनको मानूंगा, लेकिन बिलफर्ज मेरे दुनिया से जाने के बाद अगर मोहम्मद आ गए तो तुमने उनको मानना है। मैं आपको मिसाल देती हूँ छोटी सी, सिर्फ बात बाज करने के लिए, कि मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं और हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि किसी भी दिन यहाँ कोई बहुत हमारा ऐसा प्यारा आ जाएगा जिसको हम बुलाते हैं, कोई भी, यानी ऐसा शख्स जिसको देख के हमें खुशी हो सकता है ना, कोई आलिम, कोई दीनदार, कोई भी शख्स है। तो मैं आपसे क्या कहती हूँ कि देखें, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो किसी भी दिन आ जाएंगे, तो अगर वो आए ना तो मैं तो इंशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत करूँगी या मैं उनसे फ़ायदा लूँगी, लेकिन अगर मेरे जाने के बाद आ गया ना तो आपने उनकी ज़रूर बात सुननी है। बात समझ गए ना? तो आप बताइए कि क्या आपको फिर ये मेरी बात सुननी चाहिए कि नहीं? अब यहाँ वो सवाल जो आप सब खासतौर पे बच्चियाँ गौर से सुने, जो यहाँ ज़ारा के रहती हैं और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स होंगी आपकी, एक क्वेश्चन हमारे जहन में बहुत उभरता है कि भाई, हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो हम मुसलमान हैं, तो वो चूंकि क्रिश्चियन घर में हुए तो वो क्रिश्चियन रहे, वो क्यों इस्लाम लें, हम क्यों क्रिश्चियन ना बन जाए? होता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है ना जहनों में, ठीक है। हम क्यों इस्लाम की दावा उनको करें, वो क्यों ना करें? तो यहाँ जवाब है। दूसरा एक और शुबा भी लोग देते हैं कि देखो, आज के यहूद नसारा अपने दीन पे तो अमल कर ही रहे हैं ना, तो फिर हम उनको क्यों के मुसलमान हो जाओ। ठीक है, वही जो आयत पीछे हमने पढ़ ली कि जो भी मना मना बिल्लाही और मानता जाए अपने दीन को तो वो जन्नत में जाएगा। तो जवाब नोट करें कि अगर आज के दौर में कोई यहूदी या नसरानी, क्रिश्चियन और ज्यू अपने दीन पे अमल करता है ना, तो उसको मुसलमान होना पड़ेगा, क्योंकि उनके दीन का और उनकी किताब और उनके नबी का ये हुक्म था कि तुमने अगर मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बात सुन ली तो तुम्हें उनके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी सल्लम की बड़ी वाज़ह हदीस है कि आपने फरमाया कि जिन कानों ने सुन लिया, यानी जिसको ये खबर मिल गई कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गया, फिर अगर वो मुझ पर ईमान नहीं लाया तो उसका ठिकाना आग है। तो गोया के यहूद और नसारा को हम दो गिरोहों में बांटेंगे, एक नबी सल्लम की आमद से पहले के लोग, उनमें से बहुत सारे जन्नत में जाएंगे जिन्होंने अपने दौर की बातों को माना, नबियों को माना, शिर्क नहीं किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक दूसरा दौर शुरू हो गया। इसके बाद किसी यहूदी और नसरानी के जन्नत में जाने की दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, इताअत और उनकी मदद है। क्लियर है ये पॉइंट? आप देखिए, नबी की इताअत की बात है ना, नबी को मानना है कितनी बड़ी बात है। किसी का मैंने बहुत पहले एक दर्स सुना, तो वो जैसे मोहब्बत में बात करते हैं ना लोग, उन्होंने कहा देखो जब अल्लाह ने अपनी रबूबियत का अहद लेना था तो सब सबको बुला लिया, गोरे काले काफिर फाजिर जो भी, और खुले मैदान में बुला लिया, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी नबी की रिसालत का अहद लेना था तो सिर्फ चुने हुए लोग यानी नबियों को बुलाया। नबी रिप्रेजेंटेटिव थे अपनी उम्मतों के, और ये फितरत में डाला हुआ है अल्लाह ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। मेरे पास ऐसी ईमेल्स भी मौजूद हैं, कहीं मौका मिला आपको सुना भी देंगे, आगे भी आते आएंगी ऐसी, कि जिसमें हर किताब आज, इवन हिंदुओं की जो किताब है कालकी अवतार, ऐसे आपको मैसेजेस मिलते रहते होंगे कभी ना कभी, कि जिसमें क्रिश्चियन, फिर इस तरह ज्यूज, फिर इस ज्यूज तो छुपा जाते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन सिख, हिंदू, बर्मन, जो भी इनके मजा, उनकी किताबों में एक आने वाले का तस्करा मौजूद है। आज इनकी इंजील के भी कई रेफरेंसेस इस तरह के मिलते हैं। ये अलग बात है कि उसको डिस्टॉर्टेड किए गए कि हजरत ईसा ने कहा कि मुझे तो जाना है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो वो सच्चाई की रूह वाला शख्स आएगा जिस पर तुम ईमान लाओगे। इससे भी बढ़ के आप बताइए और क्या होगा। मतलब आप देखिए कि आप पेरेंट्स हैं ना, आपके घर में कोई भी आता है, आप उसकी खिदमत खातर करते हैं ना, लेकिन आप कहीं जाते हैं तो आप क्या कहते हैं अपने बच्चों को, क्या कह के जाते हैं आप कहीं जाएं तो? जी आप बताइए दादी। मोस्टली माएं क्या नसीहतें करके जाती हैं कि देखो अगर पीछे से कोई आ गया तो तुमने उसकी अच्छी खातर करनी है, उसको पूछना है, उसका ख्याल रखना है, बहन भाइयों का ख्याल रखना, कहते हैं ना। तो अब बताइए कि जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानता तो क्या वो उसकी पकड़ नहीं होगी? तो आज के ज्यूज और क्रिश्चियंस को मुस्लिम होना है इस आयत की बुनियाद पे। ये बहुत अहम आयत है, आप इसकी शिद्दत महसूस कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो अलग बात है, लेकिन ये आयत आपकी सारी क्रिश्चियन एंड ज्यूज को मुस्लिम होने की दावत दे रही है, क्योंकि उनके नबी भी आज दुनिया में आ जाए। एक मौके पे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक दोस्त जो कुरैजा कबीले से था, करसी था, कबीले से था, तो उसके हाथ से तौरात का सफा मिल गया, उसको लेके आ गए और बड़े शौक से पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी, देखी देखी तो रात में ये भी लिखा है वो भी लिखा है, लेकिन आपका चेहरा गजबनाक हो गया। फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा भी जिंदा होकर आ जाए और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे लग जाओ तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। तो क्यामत तक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा वाजिब है, आपकी नबूवत रिसालत कभी खत्म नहीं होगी। और आप यहां एक छोटी सी बात और नोट करें, नबियों से क्या कहा जा रहा है, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो फिक्ही इख्तलाफात में आपको जवाब मुहैया करेगा, कि बास लोग क्या कहते हैं कि मेरे इमाम का फतवा, मेरे इमाम का कॉल, चले रफुल जदैन की बात कर लेते हैं, नमाज में 3 दफा हाथ ऊपर किए जाते हैं एक रकत में, कुछ लोग शुरू में तो करते हैं लेकिन रुकू से उठते हुए नहीं करते, बात मौजूद है ना, पूछा जाए कहते इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला नहीं करते थे, या उनका फतवा, मिसाल ले लें इस वक्त, बहसों को छोड़ दें, इमाम अबू हनीफा का फतवा और उसके सामने 247 रिवायतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आ गई, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तौरात और इंजील मनसूख हो जाती है अल्लाह के नबी के जिक्र से, आपके गए पैगाम से और आपकी बात आने से। तो क्या अल्लाह के नबी का ही एक उम्मती और एक इमाम, उसका फतवा और उसका कॉल सही हदीस के मुकाबले में नीचे नहीं होगा? ये मुफस्सरीन ने इस पे बहस की कि पिछले तमाम मजाहिब टूट गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, तो क्या उम्मत के लोग सिर्फ इस बात पे झगड़ते रहेंगे कि मेरे इमाम का फतवा, मेरे उस्ताद की बात, जबकि सामने सही हदीस दे दी? क्या इतनी भी वैलिडिटी नहीं है अल्लाह के नबी की सही हदीस की? तो फिर जो इन बातों को सुन के भी कहें नहीं वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि हम हनफी हैं तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, और चूंकि हम हनफी हैं तो हम तीन तलाकों को एक समझेंगे, तो उनकी खुशी। लेकिन हुक्म यही है, क़यामत तक कौल अल्लाह व कौल रसूल। जिस तरह रसूलों की अंधी तकलीद जायज़ नहीं थी, आज किसी इमाम की, किसी बुजुर्ग की अंधी तकलीद, उसकी बैत करना ये नहीं चल सकती। किसी पैगंबर का सिक्का अब नहीं चल सकता, तो आप बताइए कि फिर किसी नबी की बात के मुकाबले में एक उम्मती की बात कैसे चल सकती है? तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करने की ज़रूरत है कि हमें ऐसी बातों पे खुद अमल की तौफीक दे। हुक्म आ गया, मसला पता चल गया, अब करना ही करना है, दैट्स इट। कहते हैं कि हजरत मूसा अपने पास उलमा को बुलाते थे और उनसे तौरात की आयतें बता के कि इस पे ये, फिर अमल लेके फिर अहद लेते थे और बुलाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने वाला दरअसल आज अपने ही रसूल का मुनकर है, उसको ये बात माननी पड़ेगी कि मैंने अपने नबी की बात नहीं मानी। और अल्लाह ताला इसके ऊपर हम सब के दिलों को खोल दे। तो ये थी दूसरी बड़ी बात। और वमन तवल्ला में क्या नबी आएंगे? नहीं, नबी तो कोई नहीं इस अहद से फिरा। कौन है? उम्मती आएंगे। कि आज नबियों के उम्मतियों में से जो उम्मती भी ये बात नहीं मानता, फिर वो खुद ही पकड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, ये तो मुमकिन नहीं ना कि नबी अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार करें, क्योंकि नबी मासूम होते हैं। तो लिहाजा यहां भी पता चल रहा है कि फमन तवल्ला से मुराद किसी भी नबी के उम्मती हैं बाद अजालिक फौलाइका, उलाइका भी जमा कहना ना, कि अगर आज फिर कोई नहीं मानता तो फिर उसको खुद पूछना चाहिए। ऐसी बातें इनके हिसाब से निकल जाएंगी। और क्यों नहीं बदलते, क्या वजह है आखिर इसकी वजह? इसका जवाब हमें अगले समय मिलेगा। अभी जितना इस टॉपिक हमने पढ़ा ना, ये बहुत जल्द था थोड़ा, क्योंकि ये बुनियाद थी। लेकिन आगे अब हमें इंशाल्लाह इन अगली आयतों में दिखेगा कि कितने खुशकिस्मत है कि मुसलमान है। अल्लाह इस्लाम की बातें करेगा।
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
आयत का कुछ हिस्सा मिस हुआ था, इसलिए आयत नंबर 80 से मैं दोबारा देखते हैं। यानी हमने आयत बेसिकली 78 से 80 इकट्ठी की, लेकिन कुछ हिस्सा मिस हुआ था तर्जमे में, तो पीछे से साथ ले लेते हैं। आयत नंबर 79। मा कान ली बशर ने युतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, किसी बशर को ये लायक नहीं कि जब अल्लाह उसको किताब और हिकमत और नबुव्वत दे, सुम्म यकूला लिन्नासिकून इबादल्ली, फिर वो लोगों से कहे कि तुम मेरे लिए बन जाओ बंदे, यानी मेरी बंदगी इख्तियार करो, मुझे बड़ा समझो, मुझे बड़ा बना लो। बल्कि वो क्या कहते हैं? वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, बल्कि वो तो ये कहता है कि तुम रब्बानी बन जाओ, रब वाले बन जाओ। क्यों? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा, इस वजह से कि तुम सिखाते हो किताब, व बिमा कुंतुम तदरुसून, और तुम इसको पढ़ते पढ़ाते हो। और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे आयत 80, वला या मुरुकुम, और ये नहीं वो हुक्म देता तुमको, यानी एक तो ये हुक्म नहीं देता कि मेरे बंदे बनो, और साथ ही साथ دوسری بات بھی کہتا ہے کہ ولا یا مرکم اور نہیں حکم دیتا تم کو ان تتخذ الملائکتا کہ تم فرشتوں کو بناؤ. کیا بناؤ؟ کچھ نہیں لکھا. آگے پتہ چل رہا ہے اربابن رب. یہ کس کے لیے تھا؟ مشرکین مکہ. مکہ کے کچھ قبائل جو تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کو پوچھتے تھے. تو کہا کہ یہ فرشتوں کو بھی پوچھنے کی بات نہیں کرتا. ون نبی جینا اور نہ نبیوں کو اربابن رب. نبی جین کہہ کر اہل کتاب یعنی نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا, اسی طرح مکہ والوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو نبی انسانوں کو نہیں الجاتے. یہ آگے اللہ تعالیٰ کا کمنٹ ہے, آیا امرکم بالکفری, کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کیا ہے کفر ادھر؟ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانا. بعد اذ انتم مسلمون, تمہارے ایمان لانے کے بعد. آپ دیکھیں کہ اس آیت میں شرک کی جڑ کاٹ دی گئی, اور حقیقت یہ کہ مختلف لوگوں کا شرک مختلف طرح کا ہوتا ہے. کل لوگ نبیوں کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے, اسی طرح آج مختلف طرح سے ذکر ہے. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب کیسے بنایا؟ کہ لات منات اور عزہ جیسی مورتیاں بنائیں, اور ان کو کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور کرسچینز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا. یہ ساری باتیں سنتے وقت یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شرکت غیر رب ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو لے کے کہیں کہ اللہ کو مانیں تو یہ بہت آسان ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہر انسان کے اندر ہے اور ہر انسان اس کو مانتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ رب کو ماننا نہیں, صرف رب کو ماننا. بس یہ چھوٹی سی بات ہے. کافر سے پوچھیں وہ بھی رب کو مانتا ہے, ہندو سے پوچھیں اور آپ سکھ سے پوچھیں, مسلمان سے پوچھیں, یہود نصارہ سے پوچھیں, سب کہتے ہیں ہم رب کو مانتے ہیں. لیکن رب کو ماننا اور بات ہے, اور صرف رب کو ماننا بالکل فرق ہے. اور اسی میں پھر یہ ہے کہ پھر انسان شخصیت پرستی اور ایسی ساری چیزیں بالکل بھی جائز نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں کیا ہوا کہ نبیوں کے بعد جب کتاب عام انسانوں کے ہاتھوں میں آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی بجائے شخصیات اور جگہوں سے لوگوں کو جوڑ دیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کمٹمنٹ کے ساتھ اگر کام کرنا چاہتے ہو تو یکسو ہو جاؤ, فوکسڈ ہو جاؤ. اور اگر تم دوسروں میں بھی کھوتے ہو اور ساتھ رب کو بھی لیتے ہو تو پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بالکل پارٹنرشپ کو برداشت نہیں کرتا, اور اس کو حق ہے اس کا, اس لیے کہ سب کچھ اس نے دیا. اس لیے ان سب چیزوں کو جوڑو. پھر دیکھیں کہ اس میں جو ربانی بننے کی بات ہے نا, اس کا ہماری عملی زندگی سے بھی تعلق ہے. عام حالات میں ہم ربانی ہوتے ہیں لیکن خوشیوں میں ربانی نہیں رہتے. تو خوشیوں کے وقت میں دین کو چھوڑنا ربانی ہونا نہیں ہے. اسی طرح غم کے وقت میں اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے کاموں پہ آنا ربانی نہیں ہے. فوکسڈ ہو جائے. ہم سب اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل ہم پہ آ جائے لیکن ہم رب کے سوا کسی کی طرف نہ جائیں. اللہ کو ہم سے یہی پسند ہے, یہی مطلوب ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اپنے بچے سے پوچھیں یا کوئی پوچھے کہ تمہاری امی کیسی ہیں یا ممی کیسی ہیں, چاہے آپ اس کو ڈانٹیں ماریں پیٹیں, بچہ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کہ ممی از ناٹ گڈ, لیکن کوئی آپ کہ اچھا تم ممی کو چھوڑ کے دوسری ممی لینا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں مانے گا. اور ماؤں کو خوشی کتنی ہوتی ہے اس وقت جب بچہ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہی چاہیے. تو اللہ مارے, اللہ ڈانٹے, اللہ سخت حکم دے, اللہ کی باتیں پسند آئے نہ آئے, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑنا. کون ربانی. جب اس درجے پہ اللہ کے بنیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت بھی ملے گی. اسی کا تذکرہ اب آگے بھی آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم کوئی انوکھے نہیں ہو. تمہیں میں نے اللہ والا بننے کی دعوت دے کے کوئی تم پہ ظلم نہیں کیا. کائنات کی ہر چیز اللہ کی طرف چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے. ایک آخری بات ربانی پہ کروں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ربانی بن رہے ہیں یا لوگوں کے لیے بن رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی محبت, اگر دن بہ دن آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے اور دنیا والوں سے بے نیازی ہے, تو الحمدللہ آپ کے قدم ربانیت کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر ایک پوری بک ہے, دل چاہتا ہے آپ کو سنوا دیں کبھی موقع بنے, اور اس میں چھوٹے چھوٹے سیشن ہیں, ایک ایک پیج کا ایک آرٹیکل ہے. پوری ایک کلاس میں نے آج کے سیشنز میں پڑھائی تھی, ویب سائٹ پہ موجود ہے. یقین کر اتنی اسپرچل گائیڈ ہے وہ ہمارے ریلیجن کی کہ آپ یہ کہتے ہو السلام علیکم الحمدللہ, جو چھوٹے چھوٹے کام ہم کرتے ہیں ہمیں اس کے پیچھے روح نہیں پتہ ہوتی, तो आप अपने ओन पे अगर वेबसाइट से जाके सुनना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आप देखिए कि ये भी चीज़ इनमें रखिएगा कि आप किसी से सीखते हैं, यदि आप यहाँ सीखने आ रहे हैं आप कहीं और भी जा सकते हैं, आपको कैसे पता चले कि आप ठीक बात सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। तो जिस दावत और तालीम और तदरीस के बाद आपको अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा मिलेगी ना, समझ लें कि आप ठीक जगह पे पहुंच गए। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत भी बहुत जगह से मिल जाती है, वो फिर भी ठीक नहीं होते। मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, बात बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से कैसे प्यार करो, अल्लाह की बात कहाँ तक मानो। मिसाल है, एक शख्स भंगड़ा डालता है और कहता है कि मैं रब 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 कह के भंगड़ा डाल रहा हूँ, देखो मैं रब से प्यार करता हूँ, क्या ठीक समझा? नहीं समझा। उसने ये तो मान लिया कि अल्लाह से प्यार करता, लेकिन वो ये भूल गया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो रसूल की इत्तबा करो। तो हम फौरन देखेंगे कि रसूल ने अल्लाह से मोहब्बत कैसे की, भंगड़ा डाल के, लुड्डी डाल के, कवाली गा के नहीं की ना। तो वो कैसे करते थे? वो अमल से करते थे, वो तहज्जुदों में जागते थे, वो रोते थे, वो अपनी आखरत को सही करना चाहते थे। तो लिहाजा दो चीज़ें, अल्लाह की मोहब्बत और इत्तबाए रसूल, ये दो चीज़ें मिल जाएं तो आप समझे कि आप ठीक जगह पे। 19-20 के फ़र्क तो हर जगह ही होते हैं। जिस बंदे को खुद रब का पता होगा ना, वो दूसरों को भी ले जाएगा। किसी की बात सुन के अगर आपको महसूस होता है कि ये अल्लाह वाला है, और वो दूसरों को भी बताएगा, और जब मेरे पास आपके पास वो खुद ही चीज़ नहीं है तो हम दूसरों को नहीं दे सकते।